يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد آل محمد.
برات علی، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ ابھی اذان میں تو بہت وقت بچا ہے.
اذان بھی کہہ دوں گا، بہتر ہے کہ تم بھی اٹھ جاؤ.
ایسی بھی کیا جلدی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے چلے جانا.
نہیں بھائی، صبح جاؤں گا تو طلبہ ہاتھ میں بیگ دیکھ کر طرح طرح کے سوال پوچھنے لگ جائیں گے، مجھے بھی ان کے جوابوں کا حوصلہ نہیں ہے.
اس بارے میں تھوڑا اور نہیں سوچنا چاہو گے؟
رات کو 120 سال کی عبادت کے برابر سوچا ہے.
مدرسے سے جاؤ گے تو میرے ہاتھ کے کھانے سے محروم ہو جاؤ گے.
جانا مجبوری ہے، یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دینی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ میرے لیے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ عالم بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. یہی حال میری تقریر کا بھی ہے.
خوب تقریر جھاڑی، لیکن یاد رکھنا گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. کل سے ہمیں تمہیں پارکوں میں ڈھونڈنا ہوگا.
مسجد میں ایک تعلیمی مرکز کھلنے جا رہا ہے، حاجی مہدوی صاحب سے بات کی ہے، فی الحال راتوں کو وہاں سوؤں گا، آگے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے.
اگر مجھے رونا نہ آ رہا ہو تو کیا کروں؟
تمہارا ہنسنا ہی میرے لیے کافی ہے.
برات علی، سلام علیکم.
سلام حاجی صاحب.
اتنے سال میں نے تم کو پڑھایا تاکہ تم خود کو مجھ سے چھپاؤ؟
میری یہ ضرورت حاجی صاحب، میں تو آپ کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں سکتا.
کیوں، میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے کیا؟
نہیں حاجی صاحب، آپ نے تو ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے. یہ میں ہی ہوں جو نمک حرامی کر کے جا رہا ہوں.
یہ سب اگر اس خاطر ہے کہ میری کلاس میں نہیں آئے اور سمجھتے ہو کہ ناشکری کی ہے، تو وہ تو میں نے خود کہا تھا کہ مدرسے نہ آؤ.
جی حاجی صاحب، آپ نے یہ کام کیا کہ میں شرمندہ ہو جاؤں اور کلاس میں نہ آنے لگوں.
نہیں، میں نے یہ بات دل سے کی، بغیر کسی تفسیر و تاویل کے. اگر یہ بات کی تھی تو صرف اس لیے کہ نہیں چاہتا تھا تم یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی فرض باقی ہے.
حاجی صاحب، آپ مجھے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟
برات علی، جو کچھ کہنا تھا تم سارا سن چکے ہو، باقی کیا کرنا ہے یا خدا سے مانگو. ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بس یہی.
حاجی صاحب، میں نے اپنا سامان اکٹھا کر لیا ہے، مدرسے سے جا رہا ہوں میں.
اگر اپنے بابا کی باتوں کی وجہ سے جا رہے ہو تو فکر نہیں کرو، وہ چند دن بعد پشیمان ہو جائیں گے. میری طرف سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم مدرسے میں رہو اور اپنے کمرے سے استفادہ کرو.
جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر رہوں گا تو میرے اپنے زمین پر بوجھ رہے گا.
الخیر و فیما وقع، جو خدا نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے اس پر صابر رہو، تسلیم رہو اور مان لو جب تک کہ اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے.
حاجی صاحب، آپ مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہے ہیں؟ مجھ پر چلا کیوں نہیں رہے ہیں؟ جب آپ اتنی محبت سے مجھ سے پیش آتے ہیں تو میرا ضمیر مجھے اور ملامت کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، محسوس ہوتا ہے کہ ایک بیکار انسان ہوں میں.
برات علی، میں نے کبھی بھی تم سے اس حد تک محبت نہیں کی. میرے لیے پوری طرح سے روشن ہے कि तुम आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लोगे। बस इतना याद रखना कि ये अहम नहीं है कि तुम किस रास्ते से लोगों की खिदमत करना चाहते हो। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो, दिल में सदाकत हो, तो खुदा के हाथ की हिमायत को महसूस करोगे। अब जाओ जाओ, खुदा तुम्हें अपने हफ्ज़ो अमान में रखे।
खुदा हाफिज। अरे भाई, तुम भी जरा मदद करो, मैं इतना अकेला नहीं उठा सकता हूँ।
माफ कीजिए, मुझे सिर्फ गाड़ी में लाने के पैसे दिए गए हैं।
भाई सारा कुछ तो पैसा होता नहीं है, शायद ही चार कुर्सियां तुम्हें दोजख की आग से बचा लें।
खुदा आपके हकदारों पर रहमत करे, आपसे पहले इन्हीं मीरजाई साहब ने मुझे ऐसी बातों से धोखा दिया और आधी मजदूरी नहीं दी। इन्हीं सब बातों से आज मेरे सवाबों का कोटा पूरा हो गया मेरे भाई।
अच्छा जरा जहमत करो, इधर से हट जाओ, ये मस्जिद है, ये बीज खाने की जगह नहीं है।
झाड़ू लगा दूंगा जनाब।
जाओ उधर जाओ।
कहाँ
थे तुम लोग?
मुस्लिम ने कहा कि तुम यहाँ आए हो, सोचा चल के मिल लेते हैं, तुम्हारी तरह बेवफा तो है नहीं।
ज़हमत की तशरीफ लगा।
बता, मैं किसी और बात के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आखिरकार तुमने वो कमरा खाली कर ही दिया। उन चंद घंटों में जब तुम नहीं थे, मैं मदरसे की जिंदगी से पूरी तरह महसूस हुआ।
जिस नियत से भी आए हो, अच्छे टाइम पर आए हो। आओ जरा हाथ बटाओ, इस सामान को ले जाओ।
जाओ
मेरे भाई, जरा कपड़े तो बदल
लेना। इसको ले जाओ, कपड़े बाद में बदल लेना। ये ले लो, ये ले लो।
फरात अली ने जब से दीनी तालीम और मदरसा छोड़ा है, उसकी साम्राज्य खसलत उभर आई है।
जनाब अपनी ताकत को इन बातों के बजाय सामान ले जाने में सर्फ करो।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبول هو حاجي صاحب.
قبول حق هو إن شاء الله.
آپ کی کتاب گاڑی میں رہ گئی تھی، میں لے آیا ہوں.
بہت بہت شکریہ.
अभी भी आप मुझसे नाराज हैं?
जी हाँ।
आपको राजी करने का कोई रास्ता नहीं,
नहीं है मजी साहब, सिर्फ याद रखिएगा तकरीर के हमें फौरन यहाँ से चलना होगा, कुछ काम है।
जी।
या अल्लाह, सलामुन अलैकुम हाजी साहब।
या अल्लाह, अलैकुम सलाम।
सलामुन
अलैकुम।
कबूल हो इंशाअल्लाह। अर्ज करूं कि हो सकता है कि तकरीर के आखिर तक हम यहाँ ना रहें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि आपके साथ एक तफसीली गुफ्तगू हो जाए, हमें कुछ बातें करनी है।
कोई बात नहीं, हम हाजिर खिदमत हैं, लेकिन किस बारे में?
जैसा कि आपको इल्म है कि हम कुछ सकाफती और तरबियती काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंशियात और नशे के साथ मुकाबले के लिए हम आपके वजूद से भी फायदा उठाना चाहते हैं।
माफ कीजिएगा, मुझे किस बात का इल्म होना चाहिए जो कि मुझे नहीं है?
उस दिन मजीद साहब आए थे, उन्होंने नजदीक से हमारा काम देखा था।
वाह वाह, तो आप भी मनशियात के साथ मुकाबले के कार्य खैर में शामिल हैं?
मैं नहीं, कब?
उसी दिन जब आप हाजी साहब की तरफ से अपने दोस्त को आज़ाद करवाने आए थे।
मैं
हाजी साहब के कपड़े भी आपके हाथ में थे।
आप लोग माफ़ कीजिएगा, हाजी साहब लोग इंतजार कर रहे हैं, मेंबर पर तशरीफ ले जाएंगे।
जी बेहतर है। जी
बहरहाल अर्ज करूं कि खुदा का शुक्र है कि आप लोगों में एक मकबूल और महबूब शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं।
जी ठीक है,
आपकी मौजूदगी निहायत मुफीद वाकई हो सकती है।
इजाजत दीजिए,
इस बात पर जरा गौर करेंगे। आप मोहम्मद हुसैन शहीदी है ना? मैं कर्नल जहांगीरी पुलिस महकमे से बोल रहा हूं, आप मेहरबानी करके एक घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन आ जाएं। आप आ जाएं, बताऊंगा। मैंने कहा ना, आप आ जाइए, आने के बाद ही मैं सब बातें बताऊंगा। एक घंटे के बाद मैं आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज।
मोहम्मद हुसैन, आओ खाना निकाल रही हूँ। कहाँ जा रहे हो?
आरश से तय किया है कि कहीं जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा।
आरश थोड़ा रुक भी सकता है, तुम खाना खा कर जाओ।
नहीं खा सकता, एक अहम काम है।
कोई बात हुई है क्या? मोहम्मद हुसैन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ हुआ है क्या? क्यों नहीं, कुछ तो बात है।
कुछ नहीं हुआ मैदा।
कंपनी के बारे में है ना?
कंपनी से मुतालिक नहीं है।
तो किस बारे में है कि तुम एकदम से बाहर जा रहे हो?
वापस आके बता दूंगा।
कई दिनों से बस यही जवाब दिए जा रहे हो।
इस दफा मामला मुख्तलिफ है, वापस आके बता दूंगा।
ठीक है, तो मैं भी साथ आती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा काम है।
जिस एतमाद की बात कर रही थी वो बस इतना ही था?
एतमाद दो तरफा मामला है, ये वक्त बेवक्त बाहर जाने का किस्सा क्या है?
मायदा बेगम, मैं नहीं चाहता कि तुम हर छोटी बात पर परेशान हो जाओ, क्या ये गलत है?
ये वजह नहीं है, असल वजह यह है कि मैं नामहरम हूँ और बरात अली महरम है।
जैसा समझती हो समझो। जवाब नहीं दे रहा है ना?
रेंज से बाहर है, शायद हाईवे पर होगा।
तेहरान फोन किया था, अभी तक नहीं पहुंचा है।
जहांगीरी के साथ क्या करना चाहते हो?
नहीं जानता, पता नहीं क्या कहना चाहता है।
बुरे ख्यालात दिल में ना लाओ, शायद मुरादी को ढूंढ निकाला है और तुम्हें खबर देना चाहते हैं।
क्या मालूम,
मैं साथ आऊं?
नहीं यार, वहां पर मुंह से कोई बात निकल जाए और संभालना मुश्किल हो जाए। तुम सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर को मिलाओ।
कहता है रेंज में नहीं है।
तशरीफ लाइए, बैठिए बैठिए।
शुक्रिया।
माफ कीजिएगा, मैं जरा लेट हो गया।
कोई बात नहीं।
क्या आप इस शख्स को जानते हैं?
नहीं, कौन है? कर्जखाओं में से है?
कह पाया है कि मैं पूछूं और आप जवाब दें।
ठीक है।
आप कालीनों के बारे में कितना जानते हैं?
बस इतना कि अपने लिए खरीद सकूं और दूसरों से धोखा ना खाऊं।
आपको पता है कि मुरादी ने जमीन के जो पैसे लिए थे उसका क्या किया, कहां खर्च किया?
कर्नल साहब, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे?
आपको मौका आने पर बता दूंगा।
तो मेहरबानी करें, जब मौका आए उस वक्त मुझे बुला लें, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। चलता हूं।
शहीदी साहब आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हमें यह खबर दी गई कि कुछ नफीस कालीनों का मजमुआ ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा है, जो कि कौमी सरमाया है। हमने कालीनों का ट्रक जब्त कर लिया।
तो इस मसले का मेरे साथ क्या ताल्लुक है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सकाफती विरसे की स्मगलिंग में मुलविस हूँ?
अलबत्ता कालीनें तो नफीस और विरसा नहीं थी, लेकिन मजे की बात यह है कि चालान मुरादी साहब के नाम था।
हमीद मुरादी? वही जिसने हमारे साथ धोखेबाजी की?
जी।
बेगैरत बदकिमाश आदमी, तो उसने हमारे पैसे से जाके कालीने खरीदी हैं।
आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इस मामले की खबर नहीं थी?
माफ कीजिएगा, मुझे क्यों खबर होनी चाहिए थी?
हमें तो यह बताया गया कि कालीने आपके नाम है।
आपसे झूठ कहा गया।
झूठ किस लिए बोलते?
उसी तरह जैसे कहा गया कि कालीने सकाफती वर्सा है।
तो इसका मतलब है कि मुरादी का कोई दुश्मन है?
पुलिस आप हैं, मैं नहीं।
शायद मुरादी साहब और आपका दुश्मन मुश्तरक हो।
अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मुरादी से मिला हुआ हूँ? क्यों, सही कह रहा हूँ ना?
बहरहाल चालान मुरादी साहब के नाम था और फिलहाल आप पर कोई इल्जाम आयद नहीं होता।
फिलहाल?
जी हाँ, फिलहाल, क्योंकि इस केस में बहुत से मशकूक नुकात हैं। ये लीजिए।
इत्तफाक से यह केस बहुत ही वाजे और साफ है। मुरादी साहब ने हमारे साथ फ्रॉड किया और हमसे जो पैसा लिया उससे जाकर के कालीने खरीदी हैं, और आप अपने दफ्तर में बैठकर मुझसे पूछगछ कर रहे हैं और चॉकलेट पेश कर रहे हैं। अच्छा है,
मैं आपकी इन बातों को आपके गुस्से पर हमल कर।
आप जो भी समझना चाहते हैं समझें जनाब, मैं खुद इस केस में मुद्दई हूँ, ना कि मुलजिम।
इस बात का फैसला तहकीकात से होगा, और उस वक्त तक आप मेहरबानी करके शहर से बाहर न जाएं।
माफ कीजिएगा, किस हुक्म के तहत?
उस इज्जत की वजह से जो मैं जनाब शहीदी साहब को देता हूँ, वरना हुक्म लेना मुश्किल नहीं।
मेहरबानी करके मेरे वालिद को बीच में न लाएं। आप अगर ये समझ रहे हैं कि जाके हुक्म लेना जरूरी है तो जाके ले लें और मुझे बंद करवा दें। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमानत भी नहीं है, चंद दिनों तक आपका मेहमान रहूंगा। चलता हूं।
अलैकुम सलाम।
कितने हुए?
इनका काम अभी खत्म नहीं हुआ?
अभी पहुंचा है जनाब।
दुकान बंद करो, अभी हमें जाना है।
जनाब बज़र अफशा आ रहे हैं, चेक भी ला रहे हैं।
जरूरत नहीं है, जल्दी करो।
लेकिन उन्होंने भी माल भी तो खाली नहीं किया है।
खाली करवा देंगे, क्या तुम्हारा सर पे खड़ा रहना जरूरी है?
ठीक है जनाब,
जल्दी करो। देखो सामान रखने के बाद गोदाम का दरवाजा बंद कर दें, पिछली दफा की तरह दरवाजा खुला ना छोड़ें।
कुछ हुआ है जनाब?
जब मैं लड़का था कभी कभी अपने वालिद की बाइक पर आके यहां बैठ जाता और सूरज ढल जाने तक यहां बैठकर इस दश्त में खाली पुलाव पकाता रहता कि कहां तक इन जमीनों को खरीद सकूंगा। उस वक्त अब्बू बाजार में शागिर थे, हमेशा कनात की बातें करते थे। कहते थे दुनिया परस्तों की आंखें या कनात से भर सकती हैं या कब्र की मिट्टी से। उनकी सबसे बड़ी आरजू यही थी कि बाजार में मेरी एक छोटी सी दुकान हो और एक लुकमा खाने को नसीब हो। कभी कभी अब्बू की बातों से जिद में आ जाता था, जी चाहता था कि जब बड़ा हो जाऊं तो शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूं और लोग मुझे अपने बच्चों को दिखाकर कहें, बेटा इनको जानते हो, ये मिर्जाई साहब हैं, इन्होंने इस शहर के लिए बड़ी जहमतें उठाई हैं, पूरा शहर इनका एहसान मंद है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
जी हाजी साहब।
नहीं, नहीं समझ रहे हो। अगर समझते तो जाके हाफिजी से उस बात के बारे में पूछताछ ना करते और यूं जाहिर ना करते कि कोई बात होने वाली है जिसके बारे में सिर्फ तुमको खबर है।
मैं शर्मिंदा हूं हाजी साहब।
मत हो शर्मिंदा। इन जमीनों को देख रहे हो? इनमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, इतना बड़ा कि बाकी प्रोजेक्ट उसके सामने मक्खी से भी छोटे लगे। एक 50 फ्लोर का अजीमुशान टावर जिसकी छत पर फुटबॉल खेला जा सके, एक बहुत बड़ी मस्नूई झील। लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब मैं मदरसे की जमीनों पर काबिज हो जाऊं। पता है क्यों?
क्योंकि इस प्रोजेक्ट तक आने वाला वाहिद रास्ता मदरसे की जमीनों से गुजरता है।
शाबाश। जब तक मदरसे की जमीनें हाथ में नहीं आएंगी इस प्रोजेक्ट की कीमत दो आने भी नहीं है। तुम जानते हो मैं तुमसे क्यों ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं?
नहीं हाजी साहब।
इसलिए कि आरश से ना उम्मीद हो गया हूं। आरश मेरी तरह बुलंद परवाज है लेकिन अकेले फैसला करने की ताकत नहीं रखता। लेकिन तुम में ये जरूरत है कि इंसान दुकान से ज्यादा बड़े काम तुम्हारे हवाले करे।
हाजी साहब मैंने सब कुछ आपके साए में सीखा है।
मैं चाहता हूं आरिश की जगह तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाऊं।
मुझे?
हाँ तुम्हें। करोगे काम?
मैं क्या कह सकता हूं हाजी साहब, आपने अचानक ही कह दिया। मैं
तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूं जहां तुम आसानी से फैसला कर सको। यहां पर कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है।
कौन है?
मैं चाहता हूं कि जब तुम यहां से वापस जाओ तो तुम्हारा जवाब मुस्बत हो।
अम्मी कैसी हैं?
ठीक हैं।
दवाई टाइम पे लेती हैं?
हाँ।
मजीद अम्मी को इस किस्से के बारे में कुछ नहीं बताना।
डरो नहीं, उनके जहन में तुम्हारी मासूम और पाक तस्वीर खराब नहीं करूंगा।
तुम्हारा सिर्फ कद बढ़ गया है लेकिन दिमाग छोटा ही रह गया है।
क्यों? इसलिए कि फ्रॉड को गंदा काम समझता हूँ?
इसलिए कि बेवकूफों की तरह तुम भी समझते हो कि फ्रॉड मैंने किया है।
क्या नहीं किया? बताओ, नहीं किया?
नहीं, मैंने सिर्फ चालाकी से लोगों से अपना हक लिया है।
रिश्वत देना और जाली कागजात से जमीन बेचना चालाकी है क्या? मुझ बेवकूफ को देखो जो दूसरों के सामने सीना सिपर किए कहता है कि मेरा भाई बेकसूर है, उसको फंसाया गया।
तुमको इस वक्त किसकी फिक्र है? लोगों की फिक्र है, उनको अपने दो चार आने मिल जाएंगे।
शहीदी साहब के बेटे का क्या होगा?
तुम उस मौलवी के बेटे की फिक्र, वालिद इशारा भी करे तो पूरा शहर उसके नाम हो जाएगा। इन फजूलियात के बजाय जरा अपनी फैमिली के बारे में सोचो।
क्या फैमिली?
भाई मजीद, क्या तुम भूल गए हो कि दो साल पहले तक अम्मी कालीने बुनती थी? हम कब उनके एहसानों का बदला चुकाएंगे?
क्या अब तक चुका सके हो? जानते हो गलियों में कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं लोग तुम्हें?
बद्दुआओं का क्या है, सब हवाई बातें हैं। यकीन करो, दो दिन बाद किसी को ये याद तक नहीं रहेगा कि हमीद मुरादी कौन था, क्या करता था और किसका बेटा था। इस बीच सिर्फ पैसा याद रहेगा, पैसा।
कौन सा पैसा? जो था उसको भी गंवा दिया, किस पैसे की बात कर रहे हो?
मीरजाई तलाफी कर देंगे, वो जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, ये पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है।
मुझे बताया है।
ये देखो, मैं दो घंटे से किसको नसीहत कर रहा हूं। मिर्जाई के भरोसे का मतलब तुम में दम है मजीद?
हमीद, मुझे उनकी तजवीज से डर लग रहा है।
मालदार होने में डर की क्या बात है? वाकई बताओ, इसमें डर की क्या बात है? कब तक दो पैसों के लिए दूसरों की गुलामी करते रहोगे? मेरे भाई, मौका इंसान को एक बार मिलता है। अगर मिर्जाई ने तुम पर भरोसा किया है तो शुरू हो जाओ। यकीन करो, नुकसान में नहीं रहोगे मजीद, यकीन करो। तुम्हारा ये हाथ कैसा है?
उसी तरह है।
हलाल रिस्क हासिल करना एक इबादत है। जो इंसान हलाल रिस्क के पीछे जाता है, ऐसा है जैसे जिहाद के लिए आ रहा हो, लेकिन हराम किक से दिल में कसावत पैदा होती है। ऐ खुदा, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे से काम चोरी, कम फरोशी, खयानत, चोरी, रिश्वत, झूठ और हराम की कमाई का खात्मा हो, ताकि ये एक बेमिसाल मुल्क बन सके। अपनी बात को इमाम मासूम की एक हदीस से मुकम्मल करना चाहता हूँ। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जो इंसान हराम माल खाए और इबादत भी करे, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी के ऊपर घर बनाना। काश हम में से हर कोई वो सभी अहदीस जो हलाल रोजी के बारे में हैं लिखकर अपनी दुकानों में लगाएं, ताकि जो भी वहां से गुजरे उसे देखे और पढ़े और उन पर अमल करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। ये लीजिए मजीद साहब, ये आपकी खिदमत में है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है हाजी साहब?
ये सजदा शुमार है, आपकी वालिदा ग्रामी के लिए लिया है।
ये किस काम आता है?
मजीद साहब, आगे भी देखें, मेरे भाई आप ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
जी मेरा ध्यान है।
ये उन अफराद के लिए है जो कसीरु शक है।
माफ कीजिएगा हाजी साहब, मैं अरबी में बहुत मुश्किल से पास होता था। कसीरु शक वही शक्काक है ना?
हाँ, यानी वो अफराद जो बहुत ज्यादा शक करते हैं।
शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरी माँ कसीरु शक है?
जिस दिन आप मेरा लिबास लेकर तरबियती काम अंजाम देने के लिए गए थे और आपकी वालिदा घर वापस आ गई थी, याद है ना आपको वो दिन?
जी।
जब उन्होंने मुझे पहचान लिया और समझ गई कि मैं कौन हूँ, तो मुसलसल शक्कियाते नमाज के बारे में मुझसे सवाल करने लगी। मैं वहीं पर समझ गया कि वो कसीरु शक है। ये उनको दें और कहें कि बेफिक्र होकर नमाज पढ़े।
बहुत शुक्रिया, निहायत अच्छी चीज़ है। बस इसमें एक बुराई है।
कैसी बुराई?
जब भी मैं इसे देखूंगा मुझे वही दिन याद आएगा और मैं शर्म से पानी पानी हो जाया करूंगा।
तो क्या आप तन्हाई में भी अपने आप से शर्माते रहते हैं? अजीब है। अच्छा, ये अब्बास साहब कौन है जिनके लिए आप झूठ बोलने पर मजबूर हुए?
दोस्त है।
क्या आपके जिगरी दोस्त हैं वो?
इससे भी बढ़कर।
और अब नशेबाज हो गए?
जी, अफसोस के मनुष्यात का आदि हो गया है।
जिसका आप जैसा एक अच्छा दोस्त हो वो भला कैसे नशेबाज हो सकता है, मैं नहीं समझ सका।
कहानी जरा लंबी है हाजी साहब।
रास्ता लंबा है और कलंदर बेदार है। मैं जानना चाहता हूँ वो मुफस्सल दास्तान क्या है।
हकीकत में अब्बास बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही बेंच पर बैठते थे और एक ही दिन सर मुंडवाते थे। अब्बास बहुत ही नेक और सादा लड़का था। इतना नेक कि जब हम उससे कहते थे कि लोगों के घरों की घंटी में तीली लगाते हैं, जब लाइट आएगी तो मजा आएगा, तो वो नहीं मानता था। मुख्तसर ये कि हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम के वक्त तक साथ रहे। अब्बास ने खूब पढ़ाई की और बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सका, वो भी किसी और शहर में।
किस शहर में?
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता वरना आपके जहन में उसका गलत तस्वीर पैदा हो जाएगा।
समझ गया। अच्छा फिर?
गरज ये कि अब्बास ने अपनी एक क्लास फेलो लड़की के घर से रिश्ता मांगा, लेकिन लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। अब्बास नालायक लड़कों के हत्थे चढ़ गया और नशेड़ी हो गया।
ओ,
कई बार उसको समझाया कि राजी हो जाए, उस लड़की को भूल जाए और नशा तर्क कर दे। उसका नशा छुड़ाने के लिए 3 दिन तहखाने में बंद भी रखा, लेकिन 3रे दिन पता चला कि मनुष्यात बेचने वालों के पास गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और मैं उसकी निजात के लिए मजबूर हुआ कि मैं आपके अमामे और अबा का सहारा लूं।
एक नशेबाज को निजात दिलाना पूरे मुआशरे को निजात दिलाने के बराबर है, लेकिन आपने जो काम किया ये निजात नहीं है। निजात का मतलब ये है कि नशेबाज खुद तर्क करने के लिए पहला कदम उठाए। अब पहला कदम क्या है मजी साहब?
बांधना नहीं है।
शाबाश। पहला कदम जहनी तौर पर तैयार होना है। पहले बैठें, तहकीक करें कि उस फर्द का मसला क्या है जो नशा तर्क नहीं करना चाहता।
जी।
आप कल परसों से कहें कि जरा मस्जिद तक आए, मैं भी उस अब्बास साहब को पहचानूं और उसके साथ गपशप लगाऊं, देखूं कि ये करना क्या चाहता है।
तैयब अल्लाह हाजी साहब, शुक्रिया आपका।
क्या हुआ, आखिरकार उससे बात करनी है कि नहीं?
मैं नहीं जानती, 3 दिन हो गए अब्बू ने उन्हें खेतों से निकाल दिया है, उनसे कोई बात नहीं करती मैं।
अगर मैं मजबूर नहीं होती तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देती, लेकिन मोहम्मद हुसैन एक हर्फ भी मुझसे नहीं निकालता। डरती हूँ कहीं कोई बुरा हादसा ना हो जाए।
मैं नहीं जानती कि तुमको कहाँ से यकीन है कि बरात अली जानता है,
इसलिए कि आजकल मोहम्मद हुसैन और बरात अली पूरा टाइम एक साथ गुजारते हैं। देखो, मुझे यकीन है कि वो जानता है कि मोहम्मद हुसैन क्या कर रहा है।
अगर नहीं बताया तो क्या होगा?
वो बताएगा। बरात अली की बचपन से यही आदत रही है, यानी जब कभी भी उससे कोई कुछ भी पूछता था तो वो फौरन जवाब दे देता था। देखो, एक दफा मोहम्मद हुसैन ने अपनी बॉल से पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ दिया था, फिर हाजी साहब ने जाकर बरात अली से पूछा था। उसने ठानी थी कि वो हाजी साहब को नहीं बताएगा, लेकिन उसने सिर्फ 3 सेकंड में सारी हकीकत हाजी साहब को बता दी।
मैं तो यकीन नहीं कर सकती,
आजमा लेने में कोई हर्ष तो नहीं है।
ठीक है, बावजूद इसके कि मैंने फैसला किया था कि बरात अली से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, लेकिन तुमको साबित करने के लिए बरात अली से पूछ लेती हूँ। समझ गई तुम?
ठीक है, शुक्रिया।
कोई बात नहीं, चले ऊपर।
नहीं, अब मुझे चलना चाहिए।
नहीं आओगी?
नहीं, मुझसे कोई काम तो नहीं?
नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। सलाम अबू जान।
अलैकुम सलाम बेटी।
मदरसे गई थी बरात अली को ढूंढने, वो वहाँ मिले ही नहीं।
बरात अली अब मदरसे में नहीं आता।
क्यों?
कुछ गुमराह कुन बातें सीख रहा था, मैंने खुद ही निकाल दिया।
ओ, मैं मर जाऊँ, क्या कह रहे थे?
मुझसे मत पूछो कि क्या कह रहा था।
यानी इतनी गुमराह कुन बातें कर रहे थे?
तुम्हारे अब्बू के तमाम शुबहात की तकरार कर रहा था।
बरात अली की बातों का मेरे अब्बू से क्या ताल्लुक?
अरे सारी मुसीबतें तुम्हारे वालिद मोहतरम ने ही खड़ी की हैं। उसने ये शकूक बरात अली के दिल में डाले हैं। बरात अली कोई ऐसा तो था नहीं, उसकी तो सुई एक ही जगह पे आके टिक गई है। कहता है कि जब तक मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं हो जाएगा मैं अमामा नहीं पहनूंगा। बस
अब आप ज्यादा गमगीन ना हो।
अरे कैसे गमगीन ना हूँ, कैसे ना हूँ। मेरा कलेजा फटता है जब उसके कमरे में जाके देखता हूँ कि वो नहीं है। मैंने उसे हलाल की रोटी खिलाई है, मेरा एक ही मकसद था, वो भी पूरा नहीं हुआ।
आपका मतलब मेरे बाबा है ना?
वो जो भी हो उसने तो कामयाबी हासिल की है, मेरे बेटे को मेरे हाथ से निकाल दिया।
अच्छा, अगर वो मदरसे नहीं जाएंगे तो मैं उनसे शादी नहीं करूंगी।
सच कह रही हो?
जी हाँ।
यानी वाकई में सच कह रही हो?
मेरी पहले भी ये शर्त थी कि तलबा बरात अली के साथ शादी करूंगी,
शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। नजर आ रहा है कि एक अच्छे बाप के दामन में पली हो। मुझे एतराफ़ करने दो कि उस अकबर गाफिल को और कुछ आए या ना आए, लेकिन बच्चों की तरबियत मुझसे बेहतर जानता है वो।
आप तो अभी तक कह रहे थे कि सारा कसूर मेरे अब्बा का है।
अब पिछली बातों को छोड़ दो। वाकई में अगर तुम बरात अली को राजी कर सको कि अमामा पहने, तो तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा, यकीनन मैं दूंगा।
मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपको तो इल्म है कि बरात अली आप ही की तरह बहुत जिद्दी है।
ऐसी बातें नहीं करो, मुझे यकीन है कि तुम उसे मना लोगी। अपनी काबिलियत पे शक मत करो। तुम औरतें अपनी इस जबान के जरिए सांप को भी उसके बिल से निकाल लेती हो। बरात अली क्या चीज़ है?
हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। अब ये बरात अली है कहाँ पर?
बाजार की मस्जिद में है, तरबियती काम कर रहा है।
कैसा तरबियती काम?
क्या पता मुझे, आजकल तो जो कोई भी ठीक से काम नहीं कर सकता वो जाके तरबियती काम शुरू कर देता है। छोड़ो इन बातों को, तुम तो ये बताओ कि तुम उसको मना सकती हो या नहीं।
देखती हूँ क्या होता है, फिलहाल खुदा हाफिज।
तो अभी कहाँ जा रही हो?
उसको राजी करने जा रही हूँ ना।
खुदा जजाए खैर दे बेटी। ए हाजरा बेटी।
जी।
एक मिनट, आओ बैठो, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ।
आपका बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी, हमें ये किताब बहुत पसंद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी, हमने ये किताब बहुत जगह ढूंढ ली। जनाब, हमें भी इसको पढ़ने का शौक था। उस्ताद जी इजाजत, हमें इसे पढ़ना नहीं आता।
कोई बात नहीं बेटे, तुम इसकी तस्वीरें देखो बस। अच्छा बच्चों, एक मिनट के लिए किताबों को साइड पर रख दो और मेरी बात सुनो।
जनाब, सुन रहे हो ना मेरी बात? है, माफ कीजिएगा, अगर हम ये किताब पढ़ेंगे तो आप इनाम देंगे हमें?
इनाम? तुम्हारा इनाम ये है कि जब इस किताब को पढ़ोगे तो नई नई चीजें सीखोगे।
जनाब मुझे इजाजत है, मतलब ये कि अगर इनाम नहीं देंगे तो क्या एक मोबाइल सेट भी नहीं देंगे?
मोबाइल नहीं, तुम्हारी उम्र के लिए वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं।
जनाब हम ये किताब पढ़ चुके हैं, अब नहीं चाहिए। जनाब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, हमें नहीं चाहिए। जनाब हमें होमवर्क करना है, टाइम नहीं है।
तो तुम भी पढ़ना नहीं चाहते? अब एक मिनट चुप रहो, तुम लोग एक साथ बोलना शुरू कर देते हो।
जनाब माफ कीजिएगा।
सुनो सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक तालीमी मरकज है, यहाँ पर सबको सीखना होगा। यहाँ टाइम जाया करने थोड़ी आते हो तुम। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना?
जनाब इजाजत, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जनाब मुझे भी नहीं, हमें भी नहीं।
आराम से रहो, खामोश बैठो। यहाँ तुम्हें सिर्फ मेरी ही बातें सुननी होंगी। इन किताबों को ध्यान से पढ़ो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जी। सलाम। यहाँ कैसे आना हुआ?
पहले तो तुम खेतों में गए और मेरे अब्बू से कहा कि यहाँ काम भी करोगे और पढ़ाई भी जारी रखोगे। उसके बाद उनसे लड़कर मदरसे चले गए और तुमने अपने अब्बू से भी ये कह दिया है कि अमामा नहीं लगाओगे। एक मेहरबानी करो बरात अली, मुझे साफ साफ बता दो कि मुस्तकबिल के लिए तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, मुझे भी तो पता चले।
नहीं मालूम, फिलहाल चंद दिन यहाँ रहूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है।
यही तो, तुम्हारी इसी हरकत ने सबको परेशान कर रखा है। तुम्हें अगर मेरे अब्बू से लड़ना ही था तो पहले से ये काम क्यों नहीं किया? क्यों खेतों में उनके पास काम करने गए?
देखो मैं तुम्हारे अब्बू से लड़ना नहीं चाहता था, मैं मोहम्मद हुसैन के लिए गया था, तुम्हारे अब्बू ने काम से निकाल दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा, इस मोहम्मद हुसैन को कौन सा ऐसा काम होता है जिसमें तुम्हारा जाना जरूरी होता?
मैं बता नहीं सकता।
बरात अली, तुम अपना काम तो कर नहीं पाते, उस पर चले मोहम्मद हुसैन का काम करने?
कोई अहम बात होगी तभी तो नहीं बता सकता।
ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा नाम भी मत लेना, समझे?
हम मुरादी को ढूंढने गए थे, मोहम्मद हुसैन को उसका एक सुराग मिल गया था, मैं भी उसके साथ मदद करने चला गया।
मुझे ये याद रखना होगा कि तुम्हें कभी अपना कोई राज ना बताऊं।
तुम इतने दूर से मुझसे मिलने के लिए आई थी ना?
नहीं, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि अगर अमामा नहीं लगाओगे तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म।
तुम्हें किसने यहाँ आने को कहा था? क्या मैंने किताब पढ़ने के लिए नहीं बोला था? जाओ पढ़ो, शाबाश, जाओ।
तुम मश करना चाहते हो कि नहीं?
हाँ।
तो बैठो पढ़ो।
मुस्लिम, लेकिन मुझे पढ़ने में शर्म आती है।
शर्म आती है से क्या मतलब? ये पांचवी दफा है जो हम मश्क कर रहे हैं, कल को लोगों के सामने किस तरह पढ़ोगे?
इसकी मश्क करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगा ना।
मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, तुम किताब को देख कर पढ़ो, लो इसे हाथ में और पढ़ो।
मुस्लिम, तुम कितने कम हौसला हो, सब तो तुम्हारी तरह माहिर नहीं है ना मेरे भाई।
तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी इतनी मश्क करवाता तो वो आसानी से मेंबर पर बोल सकता था।
ठीक है, मानता हूँ, लेकिन अभी तुम मेरे लिए थोड़ा सा पढ़ो, मैं वादा करता हूँ कि सीख लूंगा, सिर्फ एक दफा।
वादा कर रहे हो?
हाँ, वादा।
गौर से सुनो, तुम ऐसे रवानी से पढ़ना कि आवाम को बिल्कुल पता ना चले।
ठीक है,
ये बात भूलना नहीं।
बिस्मिल्लाह।
روزه روزه عباس سلطان ادب سلطان وفا دانش آموخته مکتب امیر المؤمن آقام عباس هیچ وقتی برادر رو به اسم صدا نمیزد، حتی برادرم نمی گفت، هر جا صحبتی می شد، حرفی می شد، می گفت سیدی آقا، قربون ادبت برم آقا، آی فقط لحظه ای که از اسب افتاد، لحظه لحظه وداع بود، یه نگاه به برادر کرد گفت آقا ادرک آقا، آقا ادرک آقا، به تو تکیه داد دنیا، پاشو یله حماسی، توی که لا تا دستاتم میذاری، یکی از هزار تا کرکس، اگه چشماتو نمیبز میدونست دنیا خرابه، ولی مشکت پره آبه، یه پرستو ساله انگاری بی پر و باله، چجوری دبوم آورده، به خدا خیلی محاله، به خدا خیلی محاله، قربونت برم آقا عباس، قربونت برم.
कल रात कहाँ थे मोहम्मद हुसैन?
अब्बू जान के पास।
वहाँ जाने से पहले कहाँ थे?
कल दिन की पूरी रिपोर्ट पेश करूँ?
मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम थे कहाँ।
ज्यादा तंग ना करो मैदा, हौसला नहीं है।
तो क्या तुम अपने वादे पर अमल नहीं करोगे?
तुम्हारे फायदे में है कि फिलहाल कुछ भी ना जानो।
जैसे कि मेरे फायदे में था कि अपनी गिरफ्तारी के वारंट से भी बेखबर रहूं।
मादा बेगम, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस मसले को हल कर सकूं। नहीं चाहता कि इस मामले की तफसीलात को जानना तुम्हारे किस काम आ सकते हैं।
क्या मुरादी को ढूंढ निकालना भी इन्हीं तफसीलात में शामिल है?
किसने कहा कि मुरादी मिल चुका है?
हजरा ने फोन किया था, बरात अली ने उसे बताया।
उसकी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है। क्या तुम हमारी जासूसी कर रही हो?
जब तुम खुद कुछ नहीं बताते तो मुझे मजबूरन दूसरों से पूछना
पड़ता है। वो नहीं मिला, उसके खुफिया ठिकाने का पता चला, लेकिन वो वहां से जा चुका था।
तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया?
मैंने कहा ना चला गया था, पुलिस को खबर देने का क्या फायदा था?
उनका काम ही यही है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते, उसका कोई सुराग निकाल लेते।
कैसा सुराग लगा लेते? लगता है तुम जासूसी फिल्में ज्यादा देखने लगी हो, है ना?
तो तुम मुझे सच बताओगे या मैं खुद पुलिस के पास चली जाऊँ?
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी।
क्यों नहीं करूंगी?
क्योंकि ये काम करने से अबूजान की इज्जत खाक में मिल जाएगी।
इसका अबूजान की इज्जत से क्या ताल्लुक?
मैं कहता हूँ कि इन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है कि कुछ बताया नहीं।
मोहम्मद हुसैन, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो।
मायदा, अगर तुमने इस सिलसिले में किसी से कोई बात की तो मुमकिन है कि मैं कालीनों के केस में जेल चला जाऊं।
कौन सी कालीनी?
इंजा